हेलो,
नमस्कार आदाब सत श्री अकाल श्रोताओं, मैं मनोहर लाल कश्यप संवाददाता साझा मंच मोबाइल वाणी समाचार चैनल के माध्यम से आज फिर से आपके बीच उपस्थित होता हूं, बहादुरगढ़ दिल्ली एनसीआर से। तो मेरे सामने CI2 से जय भगवान जी हैं। तो जय भगवान जी, आपका साझा मंच मोबाइल वाणी में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप सबसे पहले अपना नाम परिचय बताइए हमारे श्रोताओं को, सुनने वालों को।
मैं जय भगवान
जी,
प्रदेश महासचिव CITU हरियाणा
जी। तो जय भगवान जी, हमारे श्रोताओं को अवगत कराइए कि आज आप किस मुद्दे पे बात करने वाले हैं, बताइए।
देखिए, पिछले कई दिनों से शायद आप सब समझते हैं कि
जी
फरीदाबाद के खोरी गांव को उजाड़ने की प्रक्रिया वो जारी है
जी,
और ये प्रक्रिया जो है वैसे तो लंबे समय से चल रही थी
जी,
लेकिन 7 जून को माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद
जी
उस जगह को खाली करवाया जा रहा है
जी।
और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो खोरी गांव है
जी,
बस्ती कह लीजिए मजदूरों की
जी,
ये लगभग 40 साल से बसी हुई है।
तो
एक लाख के करीब
मैं इसमें हाँ। आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या वो ये झुग्गी झुग्गी झोपड़ी कहा जा सकता है, क्या कह सकता है?
नहीं नहीं झुग्गी झोपड़ी नहीं
जी,
वहाँ सभी मकान पक्के बने हुए हैं
जी
और उनके लेंटर पक्के हैं लगभग मकानों के, और
हमने
खुद वहाँ कई बार जो है वहाँ हम गए हैं इस बीच में
जी।
वहाँ पर बिजली की भी सुविधा थी, पानी की भी सुविधा है, वहाँ गलियाँ बनी हुई है
जी।
पिछले 35 साल से। मैं आपको बता दूं कि 1995 में जब हम वहाँ गए, 1995 में वहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर पार्क के नाम से पार्क का उद्घाटन होता है और उस समय के जो मंत्री हैं महेंद्र प्रताप उसके उद्घाटन करता है
जी।
और वहाँ पर अभी भी 2018-19 का बोर्ड लगा हुआ है, माननीय जो मंत्री हैं कृष्ण पाल गुर्जर जी उनकी सांसद निधि से वहाँ पर गली का निर्माण हुआ है
जी जी।
तो एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग अपने 35-40 साल से वहाँ रह रहे हैं
जी।
और ये अलग बात है कि उनके पास जो है वास्तविक जो कागजात वहाँ मौजूद नहीं है। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे दलालों ने किसी तरीके से जो भी सरकारें आई होंगी उनके साथ मिलजुल के जैसे भी तैसे करके उनको जमीन बेच दी गई। वो बेसिकली वो जमीन वो थी जहाँ पर खनन होता था पहले, वो खनन बंद हो गया। हाँ
जय भगवान जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कभी सरकार ने या किसी विभाग ने इनको अवगत कराया गया कि हटाया जाएगा, आप अपना व्यवस्था कर लीजिए, ऐसी कुछ बात हुई कभी नोटिस वगैरह?
देखिए इसके ये जो है जो जमीन है
जी,
ये लगभग 150 एकड़ जमीन है
जी,
और ये म्युनिसिपल कारपोरेशन फरीदाबाद MCF ये दावा करता है कि ये उनकी अपनी जमीन है जिस पर जो है
जी,
ये धक्के से एक प्रकार से अवैध कब्जा कर लिया गया। शुरुआती दौर से ही
जी,
ये उनके पक्ष में रहा है।
जी,
2010 में जो है हरियाणा सरकार कोर्ट में गई
जी,
और हाई कोर्ट में गई तो कि इससे खाली करवाया जाए। उसके बाद 2016 में हाई कोर्ट एक निर्णय देता है
जी,
कि सबसे पहले जो है वो दो निर्णय उसमें देते हैं साथ साथ। एक निर्णय है वो केंद्र सरकार को सजेस्ट करता है हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट
जी,
कि आप जो है ऐसे जो भी ऐसी बस्तियां हैं
जी,
आप उनके लिए कोई एक ऐसी आवास की नीति बनाइए। दूसरा वो निर्णय करते हैं यहाँ खोरी गांव के बारे में कि इनका जो है आप अगर इनको बेदखल करना तो उससे पहले इनकी रिहेबिलिटेशन मतलब इनका पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए, उसके बाद जो है आप ये कार्रवाई कर सकते हैं।
हाँ,
लेकिन उस मसले को लेकर
भगवान जी, हमने भी कई बार सुना है कि सरकार कहती है या सुप्रीम कोर्ट कहती है या अदालतें कहती हैं कि भाई अब जो जहाँ रह रहा है या तो उसको वहीं बसाया जाएगा या उनको जगह दी जाएगी, उजाड़ने से पहले उनको जगह दीजिए, तो हम भी सुनते आ रहे हैं, इस पे क्या कहना है आपका?
नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने भी यही कहा था
जी,
लेकिन उसके बाद जो है फरीदाबाद जो नगर निगम है या सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट में चली गई और वहां उसने कहा कि हम इनकी रिहेबिलिटेशन नहीं कर सकते
जी।
लेकिन पूरे ड्यूरिंग पूरा ये जो मसला है पिछले 35-40 साल से जो भी सरकारें सत्ता में रही है तो किसी भी पार्टी की रही हो
जी,
और रिसेंटली अब जो बीजेपी की सरकार है वो सत्ता में है उनके सांसद निधि के द्वारा वहां पर गलियों का निर्माण हुआ है
जी,
जो 1 लाख से ज्यादा की आबादी है, 10 से 15-12 हजार वहां मकान बने हुए हैं, लोगों ने अपने आशियाना बनाए, मजदूर हैं ज्यादातर जो है जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो निर्माण का काम करते हैं, जो अपनी रेडी पटरी लगते हैं, जो जो है ऐसे अपना गुजारा करके जिन्होंने अपना आशियाना बनाया, अपना पेट काट कर आज उनको बेदखल किया जा रहा है। और देखिए मैं दूसरी बात में
वहाँ पे मजदूर ही लगभग रहते हैं
ज्यादा, सभी मजदूर ही हैं
जी,
वो हर तरह का काम वो फैक्ट्री में भी काम करते हैं, महिलाएं घरों में भी काम करती हैं, रेडी पटरी का काम करें, सारे की सारी मजदूर आबादी है लगभग 1 लाख के आसपास। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि इनका रिहेबिलिटेशन ना करो, हाई कोर्ट का डिसीजन जो है वो एज इट इज है, लेकिन उसको हरियाणा की सरकार ने एग्जीक्यूट नहीं किया पिछले 7-8 साल से
जी।
और ये भी है जो हुड्डा डिपार्टमेंट है उसने पिछले 8 साल से ये शपथ पत्र दे रखा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हम जो है इनके पुनर्वास की व्यवस्था करेंगे, लेकिन हरियाणा सरकार ने वो व्यवस्था नहीं की। लेकिन अब अंततः जाके सुप्रीम कोर्ट का ये जो लीव बेंच इसको बोलते हैं छुट्टियों में ये निर्णय आया है, बेंच ने जो निर्णय दिया है कि इसको खाली करवाया जाए, तो अब जो आसियाना उसको ढहाने की तैयारी चल रही है, लोग जो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो है वो बुलडोजर चला के लोगों का जो है जो उन्होंने अपनी मेहनत से जो कमाया है मजदूरों ने आज उनको तहस नहस किया जा रहा है।
जय भगवान जी, मैं आपको रोकते हुए एक सवाल और करूंगा, क्या इसको कांग्रेस इनको पुनर्वास करना चाहती थी कांग्रेस के टाइम में और बीजेपी इनके खिलाफ है कि मतलब इनको हटाया जाए यहाँ से, इसमें क्या कहना है आपको?
देखिए इसमें दोनों ही सरकारें चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, मतलब कांग्रेस के समय पर जो है 2010 के अंदर जो है हाई कोर्ट में अपील की गई, उस समय कांग्रेस की सरकार थी
जी।
और डिसीजन जो आया वो बीजेपी के राज में आया, उस टाइम बीजेपी की सरकार थी, लेकिन उस समय फिर भी जो है हुड्डा डिपार्टमेंट तो वो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का है, वो तो कांग्रेस का राज रहा, बीजेपी का उसने शपथ पत्र दे रखा है। अब 16 से लेके 21 तक 5 साल बीजेपी के राज में भी गुजर गए, इसमें 2 बार यहाँ की सरकारें रह ली, लेकिन उसको खाली तो नहीं करवाया गया। अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है और इस बीच में सांसद नीतियों से वहां पर जो है गलियां बनती है, वहां पर आंगनवाड़ी सेंटर है, सरकारी स्कूल है, वहां पर आशा वर्कर काम करती हैं, तो ये सारा का सारा चलता। उसके बाद जो है आप 1 लाख से 1.5 लाख के बीच की आबादी को आप ऐसे साफ कर दोगे। दूसरी बात में कि ये सरकार का जो चरित्र है वो भी समझ में आता है कि मजदूरों के प्रति उसका रुख क्या है, उसी के साथ बिल्कुल बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, बहुत बड़े बड़े वहां पर होटल बने हुए हैं, वो सारा का सारा अरावली श्रृंखला के अंदर उसका वायलेशन करते हुए बड़ी बड़ी वहां कॉलोनाइजर जो अपनी वो ऐसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं, फ्लैट्स बना रहे हैं, उस पर किसी प्रकार का कोई उनको उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं है। लेकिन ये मजदूर बस्ती है, लोगों ने जो अपने छोटे छोटे आसियाना बना रखे हैं, आप उनको तबाह करोगे। और हरियाणा की सरकार वहां का प्रीतावत का प्रशासन इस बात पे उतारू है कि उसको खाली करवाया जाए, उसको ध्वस्त किया जाए। और इसको लेके CITU ने लगातार पिछले कई दिनों से हम वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम DC से भी मिले, हमने जो है 2 दिन पहले फिर दोबारा प्रोटेस्ट किया। अब लोगों को जो है कई मजदूर जो नेता वहाँ थोड़ा बोलते थे उनको जो है गिरफ्तार करके पुलिस ने पता नहीं कहाँ रख रखा है 2 दिन से, कई लोगों को उठा रखा है जो वहाँ पर जो है लोगों को लामबंद कर रहे थे, तो ऐसी एक स्थिति बनी हुई है।
तो
हम इसकी निंदा करते हैं।
जय भगवान जी, आपसे छोटा सा एक मुद्दा और जानना चाहूंगा कि अभी तक आप लोगों ने थोड़ी सी बात तो बताई कि हमने बहुत संघर्ष किया, लेकिन मैं कहूंगा कि अभी तक आपने कोई विज्ञापन दिया, सरकार से भिड़े या कोर्ट तक गए, कहां तक आपने कार्रवाई की गई है?
देखिए 7 जून को जो है जो सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया उसका रिव्यू के लिए भी एक अप्लीकेशन दायर की गई
जी।
और उस पर भी 17 जून को जो है दोबारा फिर कोर्ट ने कहा कि ये बस्ती तो आपको खाली करवानी पड़ेगी, 6 सप्ताह का टाइम दिया हुआ है, ठीक है। और उसकी आड़ में जो है जो प्रशासन है सरकार है वो उसको खाली करवाने पर आमदा है। और इसको लेके हम DC से मिले और हमने जो है उनको अपना मेमोरेंडम सबमिट किया, ये 3 जुलाई को हम वहां मिले। और उसके बाद फिर जो हमने 7 जुलाई को फिर हमने प्रोटेस्ट किया, हम लोगों से दोबारा वहां पर मिले, ADC से फिर हम मिले। लेकिन इस बीच में सरकार सुप्रीम कोर्ट का बहाना लेके ऐसा कर रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी ये नहीं कहा है कि आप इनको बिना रिहेबिलिटेशन के आप इनको यहाँ से उखाड़ो, ठीक है। वो रिहेबिलिटेशन का काम सरकार के द्वारा नहीं किया गया और इनको अब उजाड़ने की प्रक्रिया सरकार ने शुरू कर रखी है, जिसकी हम निंदा कर रहे हैं और हम इसको इसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं जहाँ तक हमारी और हम पूरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, CITU और बाकी लोगों से भी हम अपील कर रहे हैं।
जय भगवान जी, आप क्या सुप्रीम कोर्ट को क्या नाम चैलेंज करेंगे इस मुद्दे पे कि सुप्रीम कोर्ट
हम सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज नहीं करेंगे, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस है उन्होंने पिछले दिनों एक बयान जो है उन्होंने एक कन्वेंशन के अंदर एक बात की कि जो हमारी जो जजमेंट्स हैं वो जजमेंट जो है 3-4 एरियाज पर आधारित, उसमें जो है तर्क हो, फैक्ट हो और उसमें जो है मतलब ह्यूमन एंगल भी उसके अंदर शामिल होना चाहिए। तो यहाँ मतलब जो जजमेंट है उसके अनुरूप जो है फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का हुआ है लेकिन मजदूरों के साथ न्याय नहीं हुआ है, फैसला हो गया लेकिन न्याय नहीं हुआ। लेकिन समस्या यही है कि इसको कौन प्रोसीड करेगा, क्या करेगा? अब जो मजदूर बेचारे उनके पास ना पैसा ना सुप्रीम कोर्ट में इतना बड़ा वो है, तो ऐसी स्थिति में जो है सरकार को जो चाहिए उसकी बजाय जो है ये बेदखली पर अभी तो ये सरकार का बिल्कुल मजदूर विरोधी जो चरित्र है। और
तो के साथ मैं तो यही कहूंगा कि अभी मजदूर बेचारा कोविड 19 के महामारी में इतना बेदखल हो चुका है, परेशान हो चुका है, टूट चुका है, मर चुका है, और इस टाइम में सरकार ऐसा कर रही है, तो आप ये बताइए कि इसकी सरकार ने या सुप्रीम कोर्ट ने कब लास्ट डेट दे रखी है कि इनको कब तक हटाना है?
ये 6 सप्ताह का टाइम दिया हुआ है,
मेरे विचार से 6 सप्ताह
जो है, हाँ ये 20 तारीख तक 6 सप्ताह शायद इसके हो जाएंगे,
ये जुलाई वाली
20 जुलाई तक 6 सप्ताह हो जाएंगे। और सरकार इस बीच में जो है, सरकार ने बीच में 30 तारीख को एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ तो मुख्यमंत्री हरियाणा ने कहा कि इनको शिफ्ट करके आशियाना के में फ्लैट दिए जाएंगे, लेकिन अभी जो आशियाना के अंदर भी उसको जो घोषणा की गई थी 1 जुलाई को कि मुख्यमंत्री का बयान आया था कि हम इनको शिफ्ट करेंगे, 1400 हमारे पास ऐसे आशियाना के तहत डबुआ में वो है, फ्लैट है, वहां इनको शिफ्ट कर देंगे और कुछ और भी व्यवस्था करेंगे, लेकिन उसके बाद जो है इस बारे में भी कोई प्रक्रिया सरकार ने शुरू नहीं की है और मजदूरों पर काफी उनको टेररिज करके धीरे धीरे करके उनको वहां से धक्के से खाली करवा रहे हैं और बुलडोजर चलाने की प्रक्रिया वो सरकार ने शुरू कर रखी।
तो जय भगवान जी, हम जाते जाते आपसे यही कहेंगे कि आपको साझा मंच के माध्यम से कोई भी बात, कोई भी मुद्दा उठाना हो इन लोगों के लिए, हमारे वक्त आपके साथ में, आप जब भी जैसी जैसी पोजीशन हो हमारे को इस विषय में बताते रहे, हमारे श्रोताओं को बताते रहे, और हम इस मुद्दे को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो जय भगवान जी, आपका साझा मंच की ओर से हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे श्रोताओं को आके इतनी अच्छी जानकारी दी, और मैं आशा करता हूं भविष्य में कि आप समय के अनुसार हमको इस प्रकार से समय देते रहेंगे हमारे श्रोताओं को। तो श्रोताओं, अभी सुन रहे थे हमारे जय भगवान CI2 से। जय भगवान जी, धन्यवाद आपका।
शुक्रिया।